वो अपने वो मियां मिठू बनता रहता हूँ, नो, वो शेयर करता हूँ किसी तरीके से हमारे जो सुनने वाले उन तक ये मैसेज पहुंचे, भाई हम जो बता रहे हैं वो वाकई सही है, ये लोगों के नाम ले लेके बता रहे हैं, क्योंकि आपको फोन करके पूछे भाई आप गए थे, हाँ गए थे, तो वो ये वो लोग हैं जो कि या अच्छे रिव्यूज भी डालते हैं, वो तो अपना नाम वहां पर लिख देते हैं, लेकिन वो लोग हैं जो मुझे कॉल करके भी कहते हैं भाई हम गए थे, हमें बहुत मजा आया, तो मैं उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो लोग जाते हैं और जाके खा के इंजॉय करते हैं। और देखिए कॉल करें ना करें, लेकिन अगर आपने एंजॉय कर लिया ना, तो मैं समझ लिया मैंने भी आपने, बस अल्लाह ताला मेरे से खुश हो गया। वो कहते हैं ना वो भाई घर से मस्जिद है बड़ी दूर, चलो ऐसा करें एक रोते हुए बच्चों को सहाया जाए। मैं तो उन लोगों में से एक बंदा हूँ भी, मैं तो चाहता हूँ कोई बंदा किसी वजह से कोई रीजन बन जाए, मुस्कुराहट आ गई चीज आपके चेहरे पे, अगर आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई तो मैंने कुछ पा लिया। अब केटरिंग क्या है, केटरिंग स्पेशल लगा रखा हुआ है हमने, बहुत अच्छी रीजन और प्राइसेस लगा रखी हैं। वो आप अगर 30 लोग प्लस का आपके पास ऑर्डर है, तो बेशक 1000 लोगों का भी ऑर्डर है, तो हमारे बहुत सारे बैंकर्स हॉल जो है यहाँ पे शहर में बड़े बड़े नाम जो है, मैं आपको गिना सकता हूँ लेकिन मैं नाम नहीं लूंगा, तो वो जो है ना वो बैंकर्स हॉल हमें कॉल करके केटरिंग करवाते हैं और वहां पे सर्व करते हैं। अब उन लोगों के बिजनेस ऑलमोस्ट खराब हो चुके हुए थे उन बैंक हॉल्स के, अब वो खुद ही कहते हैं शाहजी ये जब का फूड आपके रेस्टोरेंट से आना शुरू हुआ है हमारे लोगों का जो टेस्ट है वो डेवलप हो चुका है, और लोग जो कह के जाते हैं भाई आपका फूड बड़ा अच्छा था, लेकिन वो भी नहीं बताते किसी को कहां से आया था, लेकिन हम भी नहीं बताएंगे कभी भी किसी को भी ये फूड हमारे रेस्टोरेंट से आया था, वो चुपके से आएगा बैकडोर से और आपके बैंकट हॉल में वो ड्रॉप हो जाएगा, वहां पे वो डिलीवर हो जाएगा और डिलीवर करके आप वहां पे सर्व करें अपनी टीम के साथ और किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन उसका फायदा क्या होगा, एटलीस्ट लोगों तक अच्छा फूड पहुंचेगा। ये तो बहुत सारी ऐसी जगह मैं आपको गिना भी सकता हूँ, वो मैं खाता नहीं हूँ मीट, कहीं भी कुछ स्मेल आती है, अब इतनी जगहों पे आप जाओगे अगर वो मीट में स्मेल आती है आप कैसे मीट अंदर जाएगा, अगर आपने अच्छा मीट खाना है, अच्छा गुट खाना है, अच्छा चिकन खाना है, तो आपको ओपन माई कैफे एंड क्विजीन का नंबर याद रखना है 416-526-6800 पे कॉल करनी है, और इसके अलावा जो एड्रेस है वो 1310 डंडा स्ट्रीट ईस्ट, ये बिल्कुल मिसिसागा में पड़ता है डिक्सी एंड लॉस के कॉर्नर पे, नंबर एक बार फिर 416-526-6800 पे कॉल करके आप बुकिंग करवा सकते हैं, केटरिंग ऑर्डर कर सकते हैं। और एक बार फिर बाजी और माजे भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमेशा हमें सपोर्ट की और प्यार किया
जी, बहुत बहुत शुक्रिया नासिर शाह साहब, ओपन माइक कैफे के रुए रवा 1310 डंडा स्ट्रीट डंडास एंड डिक्सी के कॉर्नर पर इन मिसिसागा 416-526-6800 ओपन माइक कैफे का फोन नंबर है। बहुत बहुत शुक्रिया सर,
थैंक यू।
जनाब शाह साहब से भी आपकी बातचीत करवा दी। कुछ स्पॉन्सर्स के पैगाम लेते हैं, प्रोग्राम में वापस आएंगे। 416-620-1778 हमारा फोन नंबर है। इसके फौरी बाद शादी जी खबरें लेके आ रही हैं, और खबरों के बाद फिर सब T20 वर्ल्ड कप जो हो रहा है उसके हालात हाजरा पे बातचीत करेंगे, प्रेडिक्शन करेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, जो जो बात। हाँ एक बात बता चलो, शाजिया के पीछे मत जाना, जो भी वो करें ना कि भाई ये टीम जीत जाएगी वो टीम जीत जाएगी, उसके ऑपोजिट जाना, बड़ा आसान तरीका है, जिसको शाजिया पिक करे उसके अगेंस्ट चले जाएं आप, तो आपके पैसे बन जाएंगे। अगर आपने उनको फॉलो किया तो ये समझ लीजिए आप लुट गए। तो एक छोटी सी मैंने एक हिंट दिया आपको, she'll be here very soon, stay tuned, we'll be right back.
You are listening to WTOR 770 AM Youngstown Toronto.
770 AM دی نشریات سنن تے حالات حاضرہ تو با خبر رہن دے واسطے نیوز انفارمیشن انالیسس الیکٹرک گڈیاں دے وچ ای آواز آفیشل ایپ یا ساڈی ویب سائٹ eawaz.com لوکل نمبر 6478724900
अपनी कम्युनिटी का सब तो वड्डा वधिया क्वालिटी वाला ते सब तो पुराना सोडी फर्नीचर हर घर की पहचान बन चुकी है।
ओ फिर बने भी क्यों ना, क्योंकि बेडरूम सेट सोफा सेट मैट्रेसेस डाइनिंग टेबल डेकोरेटिव आइटम्स गल कीजिए सारे घर का फर्नीचर वधिया क्वालिटी ते डिस्काउंटेड प्राइस ते मिल जाता सोडी फर्नीचर तो 3 साल लई नो ब्याज
142 कैनेडी रोड ब्रैम्पटन 9058747171।
क्या आपके घर और ऑटो इंश्योरेंस की रिन्यूअल हो रही है? क्या आप दुरुस्त इंश्योरेंस कवरेज के लिए अच्छी कीमत की तलाश में हैं? तो फिर आपको ऑल स्टे एजेक एजेंसी के राजा मुदस्सिर को 6472903773 पर कॉल करनी चाहिए। आज ही कॉल करें और आप दो कारों और एक घर की इंश्योरेंस कराते वक्त तकरीबन $1,775 की बचत कर सकते हैं। राजा मुदस्सिर 6472903773 ऑल स्टेट के साथ आप महफूज हाथों में है। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।
ट्रक का घूमता पहिया कनाडा की मईशत की तरक्की का जामिन। आपका ट्रक सड़कों पर राज करे और कनाडा की मईशत तरक्की की राह पर गामजन रहे। ट्रक मैनुअल या फिर ऑटोमेटिक, ट्रक की बेहतरीन सर्विस के लिए क्विक ट्रक यू थ्रू आउट ऑन्टेरियो, नो अपॉइंटमेंट नीडेड, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, वन स्टॉप शॉप। अब तीसरी लोकेशन एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन लैपनी। क्विक ट्रक यू 5196220660 quicktruckcube.com।
लिथियम आयोन बैटरियों में लगी आग ब्रैम्पटन में तशवीश का बाइस बन रही है। लिथियम आयोन बैटरियां सही इस्तेमाल होने पर महफूज रहती हैं, लेकिन जब वो नाकाम हो जाती हैं तो वो भड़क जाती हैं और आग लग सकती है, जो तेजी से फैल सकती है और काबू से बाहर होकर एक बड़ी आग में तब्दील हो सकती है, जो रिहायशों के लिए एक खतरा बन सकती है। लिथियम आयोन बैटरियां इस्तेमाल करते वक्त हिफाजती मालूमात के लिए brampton.ca/battery safety पर जाएं।
नौ लोकेशंस विचों जिथे मर्जी आ जाओ।
क्या बात है बेटे, बड़ी आवाज नजर आ रही है।
अबू जान सुबह का वास्ते है, इस गाड़ी से तो बेहतर एक गधा गाड़ी खरीदे, हर मोड़ पे रुक जाती है।
तो बच्चे परेशान क्यों होती हो? लाओ गाड़ी की चाबी दो, अभी लेकर जाता हूँ प्रीमियम ऑटो रिपेयर। गाड़ी की नब्ज देखकर खराबी की जड़ तक पहुँच जाएंगे।
मेरी सहेली ने भी कहा था,
वहाँ पर कूलिंग सिस्टम, इंजन ट्यूनअप, चार व्हील कंप्यूटर बैलेंस, ब्रेक्स, नए और पुराने टायर, साउथ आयल फिल्टर, मुफ्त में चेंज, स्टार्टर अल्टरनेटर गारंटी के साथ ठीक करते हैं। बस इसके बाद तुम्हारी गाड़ी फर फर भागेगी। इसकी मेलविक ड्राइव इटोबिको, टेलीफोन 416-747-6800।
इत्थे मछली अंडे दूध दही ते सस्ते चावल मिलदे, भल्ले पकौड़ियां ताजा मिठाइयां गर्म समोसे मिलदे, बटाला सुपर मार्केट।
स्कारपोरो दी वाहिद ते मिसाली सुपर मार्केट, बटाला सुपर मार्केट, 200 मार्कम रोड स्कारपोरो, मार्कम रोड ते इंग्लैंडन दा संगम, फोन 416-264-3111।
मजे मजे के टिक्के, मजे के कबाब,
खाना हो तो आ जाओ शाहीन टिक्का और कबाब।
All your favorite dishes prepared to perfection at Shaheen Tikka and Kebab.
मुझे मजे दे चिकन टिक्के कबाब बिरयानी दाल तड़का,
लाहौरी स्टाइल नाश्ता, मजेदार कढ़ाई, माउथ वाटरिंग कबाब एंड सिजलिंग बारबेक्यू आइटम।
शाहीन टिक्का और कबाब
इन फ्लेमिंगटन मॉल।
अपने दांतों की हिफाजत के लिए राबिता कीजिए आपकी अपनी डॉक्टर नाजिया रहमान। लेजर टूथ वाइटनिंग, रूट किनाल ट्रीटमेंट, डेंटल इम्प्लांट्स,
फ्री डेंटल ट्रीटमेंट फॉर किड्स, हेल्थी स्माइल्स ऑन्टेरियो के तहत डेंटिस्ट्री ऑन मिसेस सागा, 65 मॉन्टपेलियर स्ट्रीट, यूनिट 104, मिसिसागा रोड एंड फाइनेंशियल ड्राइव।
कॉल कीजिए डॉक्टर नाजिया रहमान 9058721100। कंसल्टेशन एब्सोल्युटली फॉर फ्री, डेंटिस्ट्री ऑन मिसेस सागा।
کینیڈین امیگریشن کے لاس اور پالیسیز میں مستقل تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، اس لیے انتہائی ضروری ہے کہ آپ کا کام ماہرانہ طریقے سے تازہ ترین معلومات کے تحت کیا جائے۔ میرا نام یاسمین طیبی ہے اور میں گزشتہ 25 سالوں سے سٹیزن شپ، پی آر رینیولز، اسپاؤزل اسپانسرشپ اور ایجنسی کے پیچیدہ کیسوں کو کامیابی سے کر کے ہزاروں لوگوں کی رہنمائی کر چکی ہوں۔ kanemsolutions.ca پر جا کر ہماری فرم کے بارے میں مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارے آفس میں سرٹیفائڈ اردو ٹو انگلش ترجمے کی بھی سہولیات موجود ہیں۔
گرل ان دا ہارٹ مسز ساگا میں آرڈر وائے فون، عمران بھائی کو کال کریں۔
انتہائی لذیذ بریانی کھانا ہو یا پھر کڑھائی کھانا ہو یا پھر سٹیکس کو انجوائے کرنا ہے تو آپ آرڈر پلیس کیجئے 9054058383۔ گرل ان دا ہارٹ۔
السلام علیکم، میں شبہات علی فرام میگا منی ایکسچینج۔ ہم تقریباً 18 سال سے منی ٹرانسفر کا کام کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو پاکستان پیسے بھیجنے ہیں یا منگوانے ہیں تو ہم سے رابطہ قائم کریں۔ ہمارا فون نمبر ہے 9052794754 اور ہمارا ایڈریس ہے 4196 کوتھرا روڈ، مسیساگا۔
ناظرین ویلکم بیک اگین، اینڈ 6:11 اور 24 سیکنڈ ہماری گھڑی میں ہو چکے ہیں اور صاحب لیے چلیں گے دنیا بھر کی سیر کرائیں گے آپ کو۔ دنیا بھر میں کئی تازہ ترین خبریں جو دنیا کی ہیں وہ آپ کو 7 بجے تک یو ول بی ٹوٹلی اپ ڈیٹڈ۔ بٹ سم ون اینڈ سم پیپل ہیو ٹو اسپانسر دس پروگرام، سو دس پورشن آف دا نیوز از براٹ ٹو یو بائے۔ ذرا میرے اسٹوڈیو میں کچھ بیمار لوگ آ گئے تو جیسے ان کی بیماری ختم ہوتی ہے تو میں آگے کا بات کرتا ہوں آپ کو۔ اچھا میرا خیال ختم ہو گئی ہے ابھی۔ ڈینٹسٹری آن مسز ساگا، ڈینٹسٹری آن مسز ساگا، ڈاکٹر نازیہ رحمان یہاں پر ہوتی ہیں۔ فیملی بریسز، cosmetic implant dentistry close to home, close to your home، دونوں لوکیشن آپ کا اللہ بھلا کرے ان برامپٹن کے علاقے میں۔ ان کا کہنا ہے ڈاکٹر نازیہ رحمان کا کہ نیو اینڈ ایمرجنسی پیشنٹس آر آلویز ویلکم، کمپریہینسو ڈینٹل کیئر، مارننگ، ایوننگ، ویکینڈز اینڈ سیم ڈے ایمرجنسی اپوائنٹمنٹس ملیں گے آپ کو، ڈائریکٹ بلنگ ٹو انشورنس اینڈ انشورنس کمپنی، اس کے ساتھ ساتھ ایزی پیمنٹ آپشن ان کے پاس ہے۔ ڈاکٹر نازیہ رحمان 9058721100 ان کا فون نمبر ہے۔ سب 3 دن کی زبردست قسم کی سیل ہونے والی ہے، 7 جون کی 7, 8 اور 9، جمعہ، ہفتہ اور اتوار کو 3 ڈے سیلز۔ اگر آپ نے اپنے گھر کی گروسریز لینی ہو تو سب جمع کر لیں گے، گروسری تو اس مہینے بھی لیں گے، اگلے مہینے بھی لیں گے، 6 مہینے کے بعد بھی لیں گے، تو پہلے سے جمع کر کے رکھ لیں کیونکہ یہ بہت زیادہ سیو کر سکتے ہیں۔ بٹالہ سپر مارکیٹ پہ آپ، بٹالہ سپر مارکیٹ جو ہے یہ بہت ہی کم سیل لگاتا ہے، مگر یہ سیل جو ہے آپ کی بہت ہی زبردست قسم کی سیل لگی ہوئی ہے اور وہاں جا کے اس کا فائدہ اٹھائیں۔ آپ کو جانا ہے 200 مارکم روڈ، مارکم اور ایگلینڈ ان کے کارنر پر، اور ان کا فون نمبر ہے 4162643111 ان کا فون نمبر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ دیجیے ہمارے، میں بھی ان کے ایک دوست کی طرح لگ رہا ہوں ابھی آپ کو، کیونکہ انہوں نے ساری بتیاں بند کر دی ہیں شاہزاد جی نے یہاں کی، ابھی موم بتی سے ہم چلائیں گے کام اپنا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اور کیا بتاؤں آپ کو، میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، برامپٹن ٹی وی اینڈ اپلائنسز کے سلطان بھائی کا کہنا ہے کہ زبردست قسم کی سیل لگائی ہے انہوں نے، آپ نے پہنچنا ہے کہاں پر، اگر عامر دکھا دیں تو بتا دوں گا میں آپ کو، 801 بوویڈ ڈرائیو بوویڈ اینڈ جنکوزی کارنر پر ان برامپٹن، 9054502828، اینی کائنڈ آف ٹی وی اینڈ اپلائنسز آپ پہنچ جائیے۔ کہاں پر آپ نے جانا ہے؟ برامپٹن ٹی وی اینڈ اپلائنسز، نمبر تو میں نے آپ کو بتا دیا۔ چلیے صاحب لیے چلتے ہیں آپ کو ہم وہیں پر جہاں سے واپس نہیں آئیں گے۔ شازیہ مالک جی، السلام علیکم و رحمۃ اللہ، کیسی ہیں آپ؟
وعلیکم السلام پین، آپ انتہائی سیکسسٹ ہیں، آپ مجھے موٹا کہتے ہیں، آپ مجھے کہتے ہیں تم اتنی چھوٹی ہو، چار فٹ آپ کا قد ہے، یہ آپ اور عامر مل کے میرا کرتے ہو، پھر آپ جو ہے مجھے کہتے ہو آپ کو نظر کم آتا ہے، پھر آپ جو ہے یہ جو یہ اتنے زیادہ الزام لگا رہے ہیں نا آپ میرے پہ، یہ آپ کو اللہ میاں پوچھے گا جب آپ کو اوپر طاہر کے ساتھ جنت میں پلاٹ نہیں دے گا، آپ کو ڈینائی کرے گا۔
اچھا تو یہ مطلب ہم نے کوئی چیز بھی حقیقت سے دور بکائی ہے
اور آپ مجھے موٹا کہہ رہے ہیں، اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں آپ کا موٹاپا ختم نہیں ہو سکتا، مطلب ہے واٹ از دس؟
میں نے تو یہ
ایسے یہ یہ ہاں نہیں نہیں یہ لائپوسکشن کے اور یہ سوئیاں ڈال کے یہ چربی ہے، یہ جو ریفرنسز دیے جا رہے تھے یہ کس کو دیکھ کے دیے جا رہے تھے؟ یہ مجھے بتائیں،
دوست آتے ہیں نا آپ کے،
بتائیں
بات دور تک چلی جائے تو میرا خیال اس میں کٹ آف کر دیا جائے۔
ہاں بس میں طاہر صاحب کو کہنے لگی ہوں کہ تمہارے پیچھے اگر عامر اور ماجد بھائی آئے بالکل اپنے ساتھ جنت سین کو لے کے جانا۔
نہیں جی نہیں، ہم کو تو بس ہی ڈائریکٹ انٹری ہے ہماری،
کیونکہ میرے ساتھ کام کر رہے ہیں آپ۔
سات بجے صاحب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ 7 بجے جو ہے وہ آپ اسپیشل پروگرام سنیں گے، کس کا؟ یہ ہے ہمارے اور آپ کے اپنے T20 ورلڈ کپ کی جو اپ ڈیٹس ہیں اس کے متعلق، 7 o'clock، ڈونٹ مس
اٹ۔ جی بالکل، آج ہمارے ساتھ ہوں گے اونٹاریو کرکٹ کے پریزیڈنٹ رنجیت چودھری صاحب، تو ان کے ساتھ ہم بات چیت کریں گے، ٹھیک ہے جی؟ اور جو میری پریڈکشن ہے وہ ہمیشہ صحیح آتی ہے، ابھی ماجد بھائی نے پھر میرے خلاف ایک بڑی بات یہاں پہ بیانیاں پیش کی ہے کہ اوہو جی جو شازیہ کہہ رہی ہے وہ بات سننے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو کہہ رہی ہوں میری ہی سنیں کیونکہ میری پریڈکشن ساری صحیح آتی ہیں۔ لاسٹ ایئر کا ورلڈ کپ یاد ہے نا، جو میں نے کہا تھا ویسے ہی ہو رہا تھا، اور ماجد بھائی نے میرے $200 دینے ہیں، آلریڈی ملین ڈالر مجھے مل نہیں رہا، اوپر سے یہ $200 اور کٹتے جا رہے ہیں، تو آپ سوچیں ذرا میری مارٹگیج کیسے پے ہوگی، ٹھیک ہے جی؟ تو میرے جو ہے نا حالات ذرا پتلے ہیں، خیر کوئی بات نہیں ہے۔ دس پارٹ آف دا پروگرام از بینگ براٹ ٹو یو بائی ہیولی ڈیزرٹس، واقعی زبردست قسم کے ہیولی ان کے پاس جو ہیں ڈیزرٹس ہیں، آپ جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا، ان کے پاس ہے پیشن فروٹ مجیٹو اور پام گرینٹ مجیٹو، پتہ نہیں اور کیا کیا کچھ، کون سے جو ہے وہ حاجی مجید قسم کے لوگ، یہ بڑی زبردست، مجھے لگتا ہے کہ یہ بڑے فرینچ انسپائرڈ ہیں کیونکہ ان کے جو ہے نا ڈیکوریشن
ہے،
اچھا ہاں، لیکن ان کی پریزنٹیشن میں کہہ رہی ہوں کہ بڑے فرینچ انسپائرڈ ہیں۔
اچھا اچھا،
ہاں جی ہاں جی ہاں جی، مجھے بھائی کنا کا علاج کرو پلیز، بھائی ساڈے کوئی کنا کا ڈاکٹر ہے کہ نہیں؟ اچھا جی، تو یہ ہے، تو جناب دے آر لوکیٹڈ ایٹ 5840 میوس روڈ، یونٹ نمبر 2، مسز ساگا۔ اچھا پھر جناب، اگر آپ نے ماجد بھائی کی طرف سوچ رہے ہیں شادی وادی کرنے کا، تو پھر آپ جائیں پائل جیولرز کے اوپر، ٹھیک ہے جی؟ دے آر لوکیٹڈ ایٹ 2720 نارتھ پارک ڈرائیو، یونٹ 42، برامپٹن میں، اور بڑے زبردست ان کے پاس جیولری ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم سنگاپور اور دبئی اور کہاں کہاں سے لے کر آئے ہوئے ہیں، تو اگر آپ کو بھی جو ہے وہ چاہے ویاہ کا، تو آپ پلیز ان کے پاس جائیں۔ اور اونٹاریوز لارجسٹ پاکستانی حلال بفے ولیج ٹیسٹ کے 2 ریسٹورینٹس ہیں، ماشاءاللہ زبردست ان کا کھانا ہے، اور فیصل چٹھا صاحب ہوتے ہیں، آپ ان کو کال کر سکتے ہیں اور وہاں سے کھانا آپ لے کے بھی جا سکتے ہیں اور بیٹھ کے بھی کھا سکتے ہیں۔ ان کا جو مسز آگا کا ریسٹورینٹ ہے اس کا نمبر ہے 9052323663، اور اوکویل کا جو ہے اس کا نمبر ہے 9052262294، ٹھیک ہے جی؟ اس کے علاوہ جو ہمارا کرکٹ کا سیگمنٹ ہے اس کو سپانسر کرتے ہیں جو سٹی آف برامپٹن اور ناصر شاہ صاحب، ہم ان کی طرف جائیں گے جب ہم کرکٹ کا سیگمنٹ شروع کریں گے، ٹھیک ہے جی؟ اچھا جناب، آج جو ہے بہت ہی، آپ کو تو پتا نا کہ ہمارا کام ہی ہے شاکنگ نیوز دینا اور ماجد بھائی کو ایجوکیٹ کرنا۔ ماجد بھائی کو میں ہمیشہ بتاتی ہوں، ماجد بھائی جب جو ہے نا وہ انفلیشن زیادہ ہو جاتی ہے تو مارگیج زیادہ ہوتی ہے، آپ کو پتا ہے اس چیز کا؟ نہیں پتا تھا نا،
بریکنگ نیوز۔
ہاں بریکنگ نیوز میں ہمیشہ آپ کو دیتی ہوں، تو میں اور ماجد بھائی ہمیشہ آپ کو بریکنگ نیوز دیتے ہیں، بہت ساری بریکنگ نیوز ماجد بھائی کو پتا نہیں ہوتی ہیں، تو جو ہے وہ میں دیتی ہوں ان کو، تو اسی طرح آپ کو بھی میں دیتی ہوں، تو ماجد بھائی بڑے اس کے اوپر حیران ہوتے ہیں، تو اسی طرح آج بھی ماجد بھائی بڑی شاکنگ
نیوز ہے،
حیران کن نیوز ہے نا۔ ہاں یہ بینک آف
کینیڈا گیا اور
مارٹگیج کے ریٹ بھی اوپر گئے،
مارٹگیج کے ریٹ بھی اوپر،
دیکھا کیسی شاکنگ نیوز ہے۔ یہ ایک اور شاکنگ نیوز آ جائی ہے جی، اس شاکنگ نیوز میں اور زیادہ انہوں نے ریویل کیا، جیسے کہ یہ ہمیں پہلے پتا نہیں تھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ چائنا اور انڈیا جو ہے
हाँ जी,
वो कनाडा के जो है सारे ये जो इलेक्शंस होते हैं इनको जो है वो इंटरफेयर के अंदर करता है, क्योंकि कितनी बड़ी खबर है।
ओहो,
देखा कितनी बड़ी खबर है माजी भाई, आपको नहीं बताते ना,
हमसे पूछ लेते पहले ये।
हाँ लेकिन आपको पता तो नहीं थी वैसे, ये
इतना बड़ा इन्होंने इतने लोगों को
पहले। हाँ जी, अब जी इन्होंने पहले जाहिर है कि बहुत लंबे दिए होंगे, ये जो कनाडा की दूसरी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है नेशनल सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस कमिटी ऑफ पार्लियामेंटेरियंस, इसने आज कहा है कि जी बेस्ड ऑन द रिपोर्ट्स ऑफ सीसेस, यानी कि असी कोई कम नहीं किया, कम कर सीसेस नहीं किया, असी फिर भी लेकिन बोल रहे हैं कहते हैं, बेस्ड ऑन द रिपोर्ट्स ऑफ सीसेस हमें पता चला है जी, ये जो आज इन्होंने अपनी रिपोर्ट हाउस ऑफ कॉमन्स में टेबल की है कि बहुत सारे एमपीज जो हैं वो इसके अंदर अलेजली इन्वॉल्व हैं। इन्होंने नेम तो किसी एमपी का नहीं दिया,
फाइंडिंग आउट द नेम्स।
हाँ, इन्होंने नेम्स नहीं दिए, इन्होंने अपनी रिपोर्ट में नेम्स नहीं दिए, लेकिन वो कहते हैं जी कि चाइना और इंडिया को ये बहुत एक्टिवली प्रोएक्टिवली ये कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जो है ये इनको देते हैं, इंडियन ऑफिशियल्स जो हैं उनके साथ कॉन्स्टेंटली ये इन टच होते हैं, चाइनीज जो ऑफिशियल्स हैं उनके साथ ये इन टच होते हैं, और ये दोनों ही कंट्रीज क्विड प्रो क्यू, यानी कि वो समझते हैं कि जैसे ये हमारा बड़ा स्ट्रांग टाइज है, इसका ये मतलब है स्ट्रांग टाइज के बेसिस पे ये हमें इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं।
मगर
कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन
लाइक जनाब जगमीत सिंह साहब ने कहा कि अगर ये ऐसा सबूत आ गया इनका कि यस ये लोग ऐसा कर रहे हैं,
मेडल कर रहे हैं हमारी पॉलिटिक्स,
इसका मतलब है कि इनको फौरी तौर पर
पॉलिटिक्स से हटाना चाहिए,
रिजाइन देना चाहिए।
हाँ, देना चाहिए। अच्छा जी, इसके अंदर अब जो पब्लिक सेफ्टी मिनिस्टर हैं डोमिनिक लेब्लॉ, उनको जिस वक्त बताया गया कि भाई ये सारा कुछ सामने आ रहा है और ये हमारी जो इन्वेस्टिगेशंस हैं फॉरेन इंटरफेरेंस इन कैनेडियन पॉलिटिक्स एंड अदरवाइज इलेक्शंस आल्सो, तो उसके ऊपर ये सारी उन्होंने बात जब सुनी, उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल हम कंसिडर करेंगे, आपकी रिकमेंडेशंस पे बात करेंगे, लेकिन जो आप रिपोर्ट लेकर आए हैं उसके एलिमेंट्स से हम डिसएग्री करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, तो हम
नहीं, हमें नाम चाहिए।
हाँ, हमें नाम चाहिए, बस हम भी वी आर इंसिस्टिंग ना दसो है जी,
नाम चाहिए।
हाँ, नाम चाहिए। अच्छा, एक और बहुत ज्यादा शॉकिंग आज न्यूज आई है, इसके बारे में भी हमें बिल्कुल पता नहीं था, और ये न्यूज ये है कि गुरपतवंत सिंह पन्नू को मारने की साजिश की गई थी माजिद भाई, ये पता था आपको? ये पता था आपको? नहीं पता था। अच्छा जी, ये फिर से जी आज एक और रिपोर्ट आई है और ये पता चला है जी कि गुरपतवंत सिंह पन्नू को असैसिनेशन का एक प्लॉट अमेरिका में ही नहीं सिर्फ कनाडा में भी बनाया गया था। हुआ ऐसे था कि नवंबर 3, 2023 को एक लड़का जो है अमनदीप सिंह उसको पकड़ा गया था और फिर चार्ज किया गया था, और चार और लोग जो थे उनको भी इसके साथ पकड़ा गया था, और इन्फॉर्मेशन ली जा रही थी कि तुम क्या करो। इनिशियली वो कहते हैं जी कि ये जो लड़का है इसको फायर आर्म्स ड्रग्स और ब्रीच ऑफेंसेस के लिए चार्ज किया जा रहा था और इसको 6 महीने की डिटेंशन जो थी वो भी दी थी, लेकिन बाद में पता चला जिस वक्त और ज्यादा इसके ऊपर वो बिठाई इन्फॉर्मेशन, तो पता चला जी कि इसके पास से ये जो लोडेड गन FN 503 9mm मिली थी, और जिसके पास से ये जो प्रोहिबिटेड 24 राउंड एक्सटेंडेड मैगजीन मिला था, ये सब ये जमा कर रहे थे गुरपतवंत सिंह पन्नू को मारने के लिए। हुआ ये था कि इसको जो था पकड़ा था फॉर फर्स्ट डिग्री मर्डर ऑफ जो ये जो निजर साहब की जो हुई थी, जो खालिस्तानी लीडर थे हरदीप सिंह निजर, सरी के जो गुरुद्वारा के पार्किंग लॉट में मारे गए थे, लेकिन जिस वक्त फर्दर इन्होंने इन्वेस्टिगेशन बिठाई तो पता चला जी कि ये उनके लिए भी कर रहा था। हुआ ये था कि पन्नू साहब के एक दोस्त हैं, वो भी खालिस्तानी एक्टिविस्ट, उनको भी कहा जाता है संतोख खेला, संतोख खेला के घर में जो थी वेडिंग थी, और उस वेडिंग के लिए उन्होंने अमेरिका से पन्नू साहब को बुलाया था, और पन्नू साहब ने जो है फिर सारी चीजें असेस करते हुए, क्योंकि यूएस गवर्नमेंट उनको कॉन्स्टेंटली कह रही थी कि आपकी लाइफ के ऊपर जो है थ्रेट है, तो उन्होंने ये जो खेला इनका बहुत लॉन्ग टाइम फ्रेंड था इनका, उसको फोन किया और उसने कहा कि तुम्हारे घर में शादी का माहौल है, तो मैं ये शादी का माहौल खराब नहीं करना चाहता और मैं नहीं आना चाहता हूं यहां पे। ये जब फर्दर ये कहते हैं जी इंटेलिजेंस एजेंसी वाले कि हमने जब इस लड़के से, ये जो अमनदीप सिंह था, उससे जब हमने और इन्फॉर्मेशन ली कि निजर साहब के तो मर्डर के अंदर तुम शामिल हो ही हो बाकी 3 लोगों के साथ, और क्या क्या तुमने प्लान किया, तो उसने ये सारे रेवलेशंस किए कि हमें इसलिए भी हायर किया जा रहा था कि अगर ये कनाडा में आते हैं पन्नू साहब और ये वेडिंग अटेंड करते हैं तो वेडिंग के अंदर इसको मार दिया जाए।
वाओ,
तो ये जो है ये नहीं आए, और फिर तो इससे जो है अब पन्नू साहब जो हैं उन्होंने आज एक बयान दिया और उसमें उन्होंने कहा जी कि इंडियन अथॉरिटीज जो हैं उनको अभी तक भी समझ नहीं आ रही है कि यूएस और कनाडा की गवर्नमेंट्स उनको क्या सिग्नल देने की कोशिश कर रही हैं कि नॉर्थ अमेरिका में आपका फुटप्रिंट टू किल समबडी ऑन फॉरेन सॉयल नहीं टॉलरेट किया जाएगा, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट को ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। तो ये जो है काफी खतरनाक जो है जी ये डेवलपमेंट्स हैं। फेडरल एनडीपी जो है यानी कि जगमीत सिंह साहब जो हैं उनकी पार्टी ने आज फिर से कहा है कि भाई ये जो ग्रोसरी के प्राइसेस हैं खास तौर पे मिल्क और ब्रेड और इस तरह की, उनके ऊपर कैप लगाया जाए, क्योंकि उनका कहना है जी कि ये जो फेडरल गवर्नमेंट है ये बिल्कुल फेल हो चुकी है, ये ग्रोसर्स के साथ कॉन्स्टेंटली बात कर रही है और उनसे कह रही है कि प्राइसेस आप नीचे करें, लेकिन वो नीचे तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। इंडस्ट्री मिनिस्टर जो है फिलिप शैम्पेन, उन्होंने तो यहां तक कहा है कि हमारी ग्रोसर्स जो है चूंकि प्राइसेस नीचे नहीं कर रहे हैं तो अब हम एक फॉरन ग्रोसर जो है उसको लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कॉम्पिटिशन बढ़े और इनको मजबूरी में प्राइसेस जो है वो नीचे करनी पड़े। एनडीपी ने कहा है कि नहीं, आप इनको बार बार कहने के बजाय कि प्राइसेस नीचे करो, आप इनके ऊपर कैप लगा दो और जो है ताकि इनकी प्राइसेस जो हैं वो बढ़े ही ना। और उन्होंने कहा जी कि लास्ट मंथ जैसे कि आपने देखा ही था कि लॉबलॉ के लिए कुछ लोगों ने जो है बॉयकॉट उसको किया था, तो वो कह रहे हैं कि ये कोई जो है वो तरीका कार नहीं है कि आप बॉयकॉट करें या आप उनको कहें कि भाई प्राइसेस नीचे करो, आपको बस यही करना चाहिए कि आप प्राइसेस पे जो है कैप लगाएं। यूनियन रिप्रेजेंटिंग अबाउट 11,000 टीटीसी वर्कर्स, उन्होंने कहा जी कि हम अपने जो अगर स्ट्राइक करेंगे तो व्हील ट्रांस सर्विस जो है वो हम जारी रखेंगे। एटीयू लोकल 113 जो है जो रिप्रेजेंट करती है टीटीसी ऑपरेटर्स कलेक्टर्स मेंटेनेंस वर्कर्स स्टेशन स्टाफ एंड फ्रंटलाइन टीटीसी एम्प्लॉयज, उन्होंने कहा जी कि हमको पता है कि जो लोग डिसेबल्ड हैं उनको बहुत सारी इसेंशियल सर्विसेज जैसे कि अपने मेडिकल केयर की चीजें उठाने के लिए जाना पड़ता है, तो इसलिए उनको हम सर्विसेज देते रहेंगे। और हालांकि दे सेड दैट दे आर विदाउट द कॉन्ट्रैक्ट सिंस मार्च 31st और कॉन्स्टेंटली उनके साथ बार्गेनिंग पे हम बैठे हुए हैं गवर्नमेंट के साथ और कोई भी टेंटेटिव डील अभी तक नहीं हुई है, लेकिन फिर भी इन लोगों के लिए हम जो टीटीसी की सर्विस है वो चलाते रहेंगे, दूसरों के लिए नहीं। कनाडा के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो जो है वो अब और भी करने कॉन्वोकेशंस जो है वो ऑर्गेनाइज करेगी, हालांकि उसके कैंपसेस के ऊपर एनकैंपमेंट जो है वो जारी है क्योंकि प्रो पैलेस्टीनियन जो प्रोटेस्टर्स हैं वो उधर से उठने को तैयार नहीं है। सैकड़ों ही जो ग्रेजुएट्स थे उन्होंने जो है अभी डिप्लोमा लिया है और सब के सब जो थे उन्होंने या तो पैलेस्टीनियन फ्लैग्स पकड़े हुए थे या वो किफाया जो इनका कफिया जो इनका स्कार्फ है वो पहना हुआ था और उस स्कार्फ के ऊपर भी वर्ड्स लिखे हुए थे पैलेस्टाइन। 30 ग्रेजुएटिंग सेरेमोनीज जो हैं वो जून 21st तक यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के अंदर होनी है डिफरेंट डिसिप्लिन की, लेकिन उसके लिए इनको यूनिवर्सिटी ने कहा था कि आप अपना एनकैंपमेंट हटाओ और उनको ये तक कहा था कि आपका एनकैंपमेंट जो है हरास कर रहा है और हेट स्पीच दे रहा है, जिसके ऊपर ऑर्गेनाइजर्स ने डिनाई किया और उन्होंने कहा कि नहीं, हम सिर्फ गाजा के अंदर वॉर रोकना चाहते हैं और हम कहना चाहते हैं कि आप बिल्कुल अपने आप को हम किसी चीज को डिसरप्ट नहीं कर रहे और हम ये बस कहना चाह रहे हैं कि आप जो अपनी सारी डाइवेस्ट करें जो इजरायली कंपनीज के साथ जो आपके यानी के ताल्लुकात हैं उनको, क्योंकि ये लोग जो हैं ये सारा पैसा गाजा के अंदर ऑफेंसिव के ऊपर यूज कर रहे हैं, तो क्योंकि इजरायली कंपनीज जो हैं बहुत सारा प्रॉफिट उससे कमा रही हैं तो उनके साथ आप अपने ताल्लुकात खत्म करो, तो इसलिए जो है हम किसी को हरास नहीं कर रहे और कुछ भी नहीं कर रहे। द इंडिपेंडेंट की आज ये स्टोरी है और इसके मुताबिक जी ट्रंप साहब जो हैं उनको जो भी कन्विक्शन दी गई है हश केस के अंदर, ये जो मनी हश ट्रायल जो था उसके अंदर अब और बातें जो सामने आई हैं कि इनको अब बैन कर दिया गया है बहुत सारी कंट्रीज में, यानी कि 40 कंट्रीज में इंक्लूडिंग कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, ये ट्रैवल बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। और ये आपको पता ही है कि ट्रैवल करते हैं अपने बिजनेस के लिए और अपने लिए लोगों को मोटिवेट करने के लिए भी कि वो इनको वोटिंग दें, तो इनके ऊपर जो है बिल्कुल रोक लगा दी गई है कि 40 कंट्रीज में ये बिल्कुल अब नहीं कर सकते हैं, ही कांट रियली लीव द कंट्री एट ऑल। और ये जो है इसमें कहा जा रहा है कि शायद इनको डेंट मिल सकता है, इनका जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अभी होने वाला है नवंबर में उसके प्रोस्पेक्ट्स को, लेकिन ऐसा जो है वो लग नहीं रहा है। इसके ऊपर ट्रंप साहब ने बात करते हुए कहा जी कि ठीक है मैं तो जेल में चला जाऊंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, लेकिन मेरे सपोर्टर्स के लिए कोई ब्रेकिंग प्वाइंट आ जाएगा। तो अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो उसको जनवरी में जो राइट्स जिस तरह के हुए थे जिस वक्त ये मान नहीं रहे थे रिजल्ट्स, तो उस तरह के फिर से क्या हो सकते हैं, क्या इसका मतलब है अभी तक समझ नहीं आई। बहरहाल उन्होंने कहा जी कि मेरे सपोर्टर्स के लिए ब्रेकिंग प्वाइंट आएगा। इसके साथ साथ लेकिन जो ट्रंप और रिपब्लिकन नेशनल कमेटी है वो कहती है जी कि मई तक हमने 141 मिलियन यूएस डॉलर्स जो है वो ट्रंप साहब की रेस के लिए रेज किए हैं, और इसमें से 53 मिलियन तो थे सिर्फ 24 आवर्स में जब न्यूयॉर्क की ज्यूरी ने इनको गिल्टी फाइंड किया था ऑन 34 काउंट्स ऑफ फॉल्सिफाइंग बिजनेस रिकॉर्ड्स। तो मतलब ये है कि ट्रंप साहब की पॉपुलैरिटी जितना वो कह रहे हैं आप इसको दबा रहे हैं, इसके ऊपर केसेस कर रहे हैं, उतनी इसकी पॉपुलैरिटी जो है बढ़ती जा रही है, जस्ट एग्जैक्टली लाइक इमरान खान के साथ जो कर रहे हैं पाकिस्तान में उसके जैसे। टाइम मैगजीन जो है जी उसको कल रात बाइडन साहब ने एक इंटरव्यू दिया है और बाइडन साहब काफी खफा नजर आए इसराइल से। उन्होंने कहा जी कि इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर नतन्याहू साहब हैं मेरे ख्याल में वो अब ये जो गाजा की वॉर है इसको प्रोलोंग करना चाहते हैं अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए, और उन्होंने कहा जी कि ये जो है कोई भी ये कंक्लूजन की तरफ जो है नतन्याहू साहब नहीं जा रहे हैं बिल्कुल। और आपको पता ही है कि बाइडन साहब की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ट्रूस की तरफ इनको लेके जाना चाहती है और कहती है कि सारे जो दोनों साइड्स जो हैं हमास भी और ये भी अपने जो एक्सचेंज करें कैप्टिव्स और इस लड़ाई को तोड़ें, लेकिन बाइडन साहब ने कहा कि इसराइली प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्रोलॉन्ग इस वॉर को करते जा रहे हैं और इससे अपने वो जो है पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं। इससे पहले उन्होंने कहा था जी कि हमने एक प्रपोजल दिया है और हमास जो है एक ऑब्स्टेकल्स जो है इसके रास्ते में डाल रहा है और बिल्कुल भी बात जो है वो हमारी नहीं मान रहा है। लेकिन हमास का हमने आपको बताया था कि कल उन्होंने कहा था कि जी आपका जो प्रपोजल है उसको हम वेलकम करते हैं, हमें उसके साथ कोई जो है वो एतराज नहीं है। अब ये जो इनके बीच में ये जो बातचीत हो रही है क्या हो रही है समझ नहीं आ रहा, क्योंकि बाइडन साहब ने कहा जी कि नतन्याहू साहब मान गए हैं ये प्रपोजल। अलबत्ता हमने आपको कल नतन्याहू साहब का बयान सुनाया था, उन्होंने कहा था जी कि वॉर उस वक्त तक नहीं रुकेगी जिस वक्त तक हमारे सारे ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो हासिल नहीं हो जाएंगे। तो लग रहा है कि ये दोनों एलाइज जो हैं इनके बीच में काफी डिस्क्रिपेंसी है और बाइडन साहब की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें काफी उसकी पोजीशन में चेंज भी आया है। पहले तो उन्होंने एंड टू वॉर जो है उसको रिजेक्ट कर दिया था और अब वो सीज फायर की तरफ जाना चाहते हैं, तो काफी ये शिफ्ट आया। इसके बीच में जो मीडिएटर है कतर ने कहा जी कि हमको जिस वक्त तक क्लियर पोजीशन इसराइल की और यूएस की पता नहीं चलेगी ये कि आपका प्रपोजल ये क्या है, उस वक्त तक अब हम बातचीत को आगे नहीं बढ़ाएंगे और मीडिएट नहीं करेंगे। हमको बिल्कुल जो है साफ साफ पता होना चाहिए कि इसराइल क्या चाहता है, यूएस क्या चाहता है, फिर हम हमास से बात करेंगे और चीजों को आगे लेके जाएंगे। जर्मनी के अंदर जी बेतहाशा जो है फ्लड्स आए हुए हैं और उनके जो बड़े बड़े सिटीज हैं जैसे बवेरिया और बैडन वुर्टनबर्ग वगैरह जो है सारा वहां पे पानी भरा हुआ है, तो आपको बिल्कुल कराची की फील आएगी देख के इस वक्त ये जो एरियाज हैं। और ये दिस इज जर्मनी, अभी तक तो जो ऑफिशियल खबर आई है उसके मुताबिक 4 लोगों की जान गई है, लेकिन जाहिर है कि अनऑफिशियल नंबर जो है वो काफी ज्यादा हो सकता है। जर्मनी के चांसलर जो है ओलाफ शोल्स, उन्होंने कहा जी कि ये सब का सब जो है क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है और ये आने वाले दिनों में और भी ज्यादा खराब होगा। हजारों ही लोग जो हैं उनके घर जो हैं उसमें फ्लड से भरे हुए हैं, 800 लोग बवेरिया में तो छोड़ के ये इलाका जो है वो चले गए हैं क्योंकि वो कहते हैं जी बेतहाशा खराब किस्म के फ्लड्स हैं और पानी का जो है वाटर टेबल और ज्यादा बढ़ेगा। 20,000 बवेरियंस जो हैं उनको अब वार्निंग दी गई है कि आप भी जगह छोड़ो क्योंकि ये काफी खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेज इसके हो सकते हैं। इसके अंदर जो काम करने वाले वॉलंटियर्स जो थे उनमें से भी काफी सारों की डेथ हो चुकी है इन लोगों को बचाते बचाते, और जो सर्च ऑपरेशन है उसमें काफी प्रॉब्लम्स आ रही है क्योंकि वाटर टेबल जो है वो काफी हाई है और स्ट्रांग करंट्स भी हैं। जर्मन वेदर सर्विस जो है उसने वार्निंग्स दी हैं कि और भी ज्यादा सदर्न और ईस्टर्न साइड के ऊपर हैवी रेन्स आ सकती हैं। यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन ह्यूमन राइट्स चीफ जो है यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट चीफ जो है वॉल्कर टर्क, उन्होंने आज कहा है कि ये जो वायलेंस है پیلسٹائن کے اندر اس کو امیڈیٹلی ختم ہونا چاہیے، خاص طور پہ ویسٹ بینک کے اندر، کیونکہ انہوں نے کہا جی کہ پیلسٹینینز کو آن ایوری سنگل ڈے بیسز جو ہے وہاں پہ بلڈ شیڈ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ اسرائیلی ملٹری اور سیٹلرز جو ہیں وہ روز کے روز نئے اٹیکس کرتے جا رہے ہیں ٹیریٹری کے اوپر، اور ان کو پوری امیونٹی حاصل ہے، اس کی وجہ سے یہ ان لافل کلنگز جو ہیں بائی اسرائیلی فورسز یہ جاری وہ رکھے ہوئے ہیں یہاں پہ غزہ کے اندر. اس کے ساتھ ساتھ ایرانین میڈیا جو ہے اس نے بھی کہا جی کہ اسرائیلی ایئر سٹرائکس اس نے دیکھی ہیں الیپو سیریا کے اندر، جس نے کہ ریولوشنری گارڈز کا ایک اور جنرل ان کا جو ہے مار دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یمن کے جو ہوتھیز ہیں انہوں نے بھی کہا جی کہ ہم نے اسرائیلی ملٹری جو سائٹس ہیں ان کو ہم نے ایلات کے اندر ٹارگیٹ کیا ہے. اسرائیلی ملٹری نے کہا کہ یہ بلسٹک مسلز ہمارے اوپر مارے گئے تھے جو کہ ہم نے انٹرسپٹ کیے تھے. مالدیوز جو ہے اس نے یہ جو جینوسائڈ غزہ میں چل رہا ہے اس کے رہتے ہوئے اسرائیلی ٹورسٹ کے اوپر کمپلیٹ بین لگا دیا ہے کہ وہ بالکل مالدیوز میں انٹر نہیں ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو یو این ایکسپرٹس ہیں انہوں نے بھی اب بہت ساری نے جو یو این کے ایکسپرٹس ہیں انہوں نے کہنا شروع کیا ہے کہ یہ جو 146 یونائیٹڈ نیشن ممبر اسٹیٹس کا جو کہا جاتا ہے کہ آپ لا کو فالو کریں، اور اس لا کو اسرائیل کو بھی فالو کرنا چاہیے اور جو پیلسٹینین اسٹیٹ ہے اس کو بھی ریکگنائز کرنا چاہیے. تو جناب یہ کافی جو ہیں گرما گرم خبریں چل رہی ہیں اب دنیا کے اندر، خاص طور پہ یورپ میں، کہ فلسطینین سٹیٹ جو ہے اس کو آپ ضرور ریکگنائز کریں. ابھی جو رشی سونک صاحب ہے آپ کو پتا ہی ہے کہ آنے والے ہیں الیکشنز بھی اس میں جو ہیں وہ یو کے میں بھی شروع ہو گیا ان کا جو ہے ووٹنگ کا پروسیس. تو یہ جو ہے اب ابھی یہ بات چیت چل ہی رہی تھی دو بڑے لیڈرز کے بیچ میں، رشی سونک صاحب کے بیچ میں اور جو ہیں کریمر صاحب جو ہیں لیبر اور یہ کنزرویٹو پارٹی کے جو لیڈرز ہیں ان کے بیچ میں، کہ اچانک بیچ میں آگئے نائجل فراج. نائجل فراج جو ہیں انہوں نے اچانک سے ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا جی کہ میں بھی میرا بھی چینج آف ہارٹ ہے، میں پب سے نکل رہا تھا اور میں نے دیکھا کہ انگلینڈ کی حالت بے تاجہ خراب ہے، تو میں نے یہ سوچا کہ مجھے ادھر اس ملک میں پولیٹیکل ریولٹ لانے کی ضرورت ہے. اب یہ جو ہیں نائجل فراج یہ کافی جو ہیں کنٹروورشل پرسنالٹی ہیں، بڑی ڈیویسو یہ فگر ہیں اور بڑا یہ فینز ہیں ان کی، بڑی بہت بڑی فین فالوئنگ ہے، میڈیا بھی جو ہے بڑا اٹریکٹ کرتا ہے، بلکہ ان کو اگر آپ انگلینڈ کا ٹرمپ کہیں تو کچھ غلط نہیں ہوگا. یہ رن کر رہے ہیں کلیکٹن ایسکس کے اندر، انگلینڈ کی جو ایسٹ کوسٹ ہے اس سے، اور یہ دونوں ہی جو اسٹارمر صاحب ہیں اور جو رشی سونک صاحب ہیں دونوں کے لیے ہی یہ نائٹ میئر جو ہیں وہ ثابت ہو سکتے ہیں. یہ ایک یو گو نے پول کیا ہے انگلینڈ کے اندر 50,000 لوگوں کے اوپر، اور اس میں انہوں نے کہا ہے جی کہ لیبر یعنی کہ اسٹارمر صاحب کی جو لیبر پارٹی ہے وہ جیتے گی، اور ان کی جیت ٹونی بلیئر کی 1997 کی جیت سے بھی بڑی ہوئے گی. اور وہ کہتے ہیں جی کہ اٹ کین بیگ 422 سیٹس ان یو کے 650 سیٹ پارلیمنٹ، جبکہ جو کنزرویٹوز ہیں یعنی کہ جو سونک صاحب کی پارٹی ہے وہ شاید صرف ہارڈلی 140 سیٹس جو ہے وہ جیت پائے گی. تو دوسرا ایک جو پول ہوا ہے مور ان کامن پول، اس کے اندر انہوں نے 15,000 لوگوں سے بات کی ہے، اس کے اندر بھی لیبر میجورٹی دیکھی جا رہی ہے، لیکن اب یہ جو ایکس فیکٹر شامل ہو گیا ہے نائجل فراج کا، اس کے بعد اب پتہ نہیں چل رہا ہے کہ اب کیا ہونے والا ہے. اور اس کے بیچ میں رشی سونک صاحب تو اب کافی جو ہیں وہ ڈر گئے ہیں، کیونکہ ویسے بھی ان کی فریجائل ہوپس ہی تھی کہ وہ اپنی پارٹی کو بچا سکتے ہیں، لیکن اب مشکل ہی جو ہے وہ لگ رہا ہے. اچھا جناب، ورلڈز لارجسٹ شاپنگ مال دبئی مال، آئی مین آف کورس ویئر ایلس، دبئی مال جو ہے اس کے بارے میں آج دبئی گورنمنٹ نے کہا ہے کہ اس کو اب یہ اور بھی ایکسپینڈ کریں گے، اور اس کے اوپر تقریباً 408 ملین یو ایس ڈالرز جو ہیں انہوں نے کہا جی ہم لگائیں گے. یہ جو دبئی مال ہے اس کے اندر 240 لگژری آؤٹ لیٹس ہیں اور 1,200 ریٹیل سٹورز آلریڈی ہیں، 200 پلس ڈائننگ آؤٹ لیٹس ہیں، اور دبئی مال کو ابھی ریسنٹلی 105 ملین لوگوں نے وزٹ کیا تھا. دبئی مال جو ہے یہ سب سے زیادہ اب دنیا کا موسٹ وزٹڈ پلیس ہے، और इसमें अभी जो 2023 में 2022 से भी ज्यादा 19% उछाल देखा गया था, यानी जो फुटफॉल है वो 19% ज्यादा था। ये मॉल जो है 2008 में ओपन हुआ था और फिर इसके अंदर दुबई मॉल जाबील भी किया गया था इंट्रोड्यूस, जिसके के अंदर उन्होंने बहुत ही हाई लाइफस्टाइल और डाइनिंग कॉन्सेप्ट्स जो थे वो दिए थे, जैसे कि आपने देखा होगा उसके साथ जो दुबई गए हैं द एड्रेस होटल है, बहुत ही यूनिक हाई एंड वो होटल है। अगर आपको पता है बहुत ही कम नॉर्थ अमेरिका में भी आपको द एड्रेस जो है वो देखने के लिए मिलता है। और दुबई मॉल के अंदर मजद भाई गेस व्हाट, 13,000 पार्किंग स्पेसेस हैं, 13,000 एंड इट इज स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 5.9 मिलियन स्क्वेयर फीट।
ओके
हैं पायन,
आई एम जस्ट ट्राइंग टू कैलकुलेट
इन
माय माइंड।
बिल्कुल ऐसे। अच्छा जनाब, दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय चांदनी विक्टोरिया बैंक्वेट हॉल। 1400 प्लस टाइप बंदा आप यहां पे बुला सकते हैं, बड़े ही जबरदस्त इनका एक्सपीरियंस है 25 ईयर्स का, बहुत ही इनका जबरदस्त किस्म की कुजीन है। दे आर लोकेटेड एट 2935 ड्री रोड मिसिसागा। आप इनको कॉल कर लें अगर आपने अपनी कोई कॉर्पोरेट या अपनी पर्सनल पार्टी यहां पे ऑर्गेनाइज करनी है। 6479653823 इनका नंबर है। डॉक्टर फियाज कुरैशी, बड़े ही जबरदस्त किस्म के ये जो है डेंटिस्ट हैं, इनके जो है तीन क्लिनिक्स हैं, दो मिसिसागा में एक स्कार्ब्रो में। इनका नंबर जो है मिसिसागा के क्लिनिक्स का 9052325678 एंड स्कार्ब्रो में 4167579999 है। एंड जनाब राजा थे बादशाह जी ऑल स्टेट में होते हैं, आपको कवरेज देते हैं बड़ी जबरदस्त, ऑटो इंश्योरेंस और होम इंश्योरेंस देते हैं। वो कहते हैं जी मेनू कॉल कर लो, है जी, तो आप इनको कॉल कर लें, ऑल स्टेट के साथ हैं ये। इनका नंबर है 6472903773। और जनाब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के शहबाज शरीफ साहब, वो चाइना पहुंच गए हैं, कहते हैं मैं और ज्यादा ताल्लुकात बढ़ाऊंगा उनके साथ। अभी ताल्लुकात पूरे नहीं है, चाइना के साथ पूरी तरह से ताल्लुकात अभी बने नहीं है, 75 ईयर्स में और बढ़ाएंगे, फर्दर एनहेंस बायलैटरल टाइज उन्होंने आज ये कहा। मुझे आपको पता था इस बात का?
नहीं मुझे नहीं पता था। मैं
कैसे तो, पता हो सकता है आपको?
देखिए आप ये देख लें कि
हाँ, कितना ज्ञान दे रही हूँ मैं
जब
आपको।
जब ये जाएंगे वहां पर हाँ। तो उसके बाद तो फिर पाक चीन दोस्ती
जिंदाबाद है,
जिंदाबाद।
तो जनाब ये जनाब आज चाइना के शेजैन में पहुंचे हैं और 2 डे विजिट के ऊपर है। यहां पे इनको जो वाइस मेयर हैं शेजैन सिटी के लुआ हंगू, उन्होंने इनको जो है रिसीव किया था। उन्होंने कहा जी कि मैं यहां पे जो लोकल और बिजनेस और इंडस्ट्री जायंट्स जो हैं उस कम्युनिटी के साथ मैं एंगेज करूंगा और ज्यादा हम जो है दोस्ती को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी तक दोस्ती सही नहीं है, सही नहीं चल रही के साथ। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि सी पैक जो है उसको भी हम नई बुलंदियों पर लेके जाएंगे, अभी तक सी पैक भी नई बुलंदियों पर नहीं पहुंचा।
अच्छा
हाँ, तो ये सारा कुछ जो है शहबाज शरीफ साहब जाके चाइना में करेंगे। भाई देखें आप बहुत काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इनकी मुलाकातें जो है प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से भी होंगी और प्रीमियर ली कियांग जो है उनके साथ भी होंगी, और उनको भी कहेंगे कि पायान आओ दोस्ती बढ़ाइए, और बढ़ाएं हम दोस्ती है, ठीक है, गले चले लगेंगे ये। अच्छा जी, आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज ईसा साहब जो है वो काफी गुस्से में थे और उन्होंने कहा जी कि हर चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट को ब्लेम मत किया करो। ये जो था आज सुन रहे थे पीटीआई का ये जो के जो अलायंस में है लोग, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाले जो पिटीशन लेकर आए थे रिजर्व सीट्स के ऊपर विमेन एंड माइनॉरिटीज जो कि दूसरी पार्टीज को दे दी गई थी, जबकि पीटीआई ने सबसे ज्यादा सीटें जीती थी, उस जो पिटीशन है उसकी हियरिंग कर रहे थे। उन्होंने कहा जी कि अगर पीटीआई ने, यानी कि ईसा साहब ने कहा कि अगर पीटीआई ने अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन ठीक से कराए होते तो ये सारे मामले जो है वो सामने ही ना आए होते। आपको पता ही है कि मामला ये था कि ये जो पिशावर हाईकोर्ट था उसने ये सारी रिजर्व सीट जो ईसीपी ने दी थी दूसरों को उसके ऊपर कहा था कि ये बिल्कुल ठीक है, जिसको कि चैलेंज किया था एसआईसी ने और पीटीआई ने, और उन्होंने ये जो थी फिर जब इनकी जब खारिज कर दी थी प्ली उसने पिशावर हाईकोर्ट ने, तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट में आए थे और उसी सिलसिले की ये हियरिंग जो थी ये यहां पे चल रही थी। तो इसके अंदर जो इनके जो एडवोकेट थे एसआईसी के फैसल सदीकी साहब, उन्होंने कहा जी कि आप इसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं, तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा जी कि ये जो एसआईसी जो है ये एक पार्लियामेंट्री पॉलिटिकल पार्टी है, ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। तो सदीकी साहब ने इसके ऊपर कहा जी कि पॉलिटिकल पार्टी जो है कैन बी पार्लियामेंट्री पॉलिटिकल पार्टी, तो सीजेपी ने इसके ऊपर कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो लेखन जो है इनके बीच में डिफरेंस रखता है। तो सदीकी साहब ने कहा जी यही प्रॉब्लम है कि कोर्ट जो है अपना एक्सप्लेन नहीं करती है चीजों को, जब आपने बैट सिंबल ले लिया था तो उस वक्त जो है आपको ये सारी चीजों को और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सोचना चाहिए था। तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसके बारे उसको हम इसका ब्लेम देते हैं, उसके ऊपर काजी फैज़ी साहब भड़क गए और उन्होंने कहा जी के नहीं, आप जो है हर चीज के लिए हमें ब्लेम मत दो और अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन ठीक कराओ। तो पायल अभी जो इनको नवाज शरीफ साहब को जो बना दिया है प्रेसिडेंट, वो सही इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए हैं और उधर दूसरी तरफ बीबीबी में जो चेयरमैन है वो बीबी जरदारी को बनाया, वो सही हो रहे हैं इलेक्शन हैं सर? तो बताओ ये बात। तो ये हुआ जी, इस्लामाबाद हाईकोर्ट जो है उसने इमीडिएटली आज सीडीए को ऑर्डर्स दिए हैं कि डी सील करें पीजीआई का जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है इस्लामाबाद में। कुछ दिन पहले आपको पता ही है कि सीडीए ने उसके ऊपर जो है वो चढ़ाई की थी और बिल्डिंग का कुछ हिस्सा जो है वो तोड़ दिया था और कहा था कि इन्होंने बिल्डिंग रूल्स का वायलेशन जो है वो किया था। सीडीए ने कहा था जी कि हमने बहुत सारे नोटिस जो है इसके प्रीवियस ओनर को 2022 और 2023 में भेजे हैं लेकिन इन्होंने कोई भी उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया। कोर्ट ने कहा सीडीए को कि अगर आपने ये नोटिसेस भेजे थे तो वो नोटिसेस कहां हैं, क्योंकि वो नोटिसेस तो आपने अदालत के अंदर पेश ही नहीं किए। अगर आपके पास नोटिसेस थे तो आज आपको वो लेकर आने चाहिए थे। हमारे पास कोई ऐसी फाइल नहीं आई जिसमें कि सीडीए का पता चला कि उसने प्रायर नोटिसेस जो है पीटीआई को जो है दिए हैं। तो एज अ रिजल्ट जो है इसको डीसील किया जाए और फौरन जो है ये इनका सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पीटीआई को वापस किया जाए। पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है वो अब ये सोच रही है जी कि जो सैटरडे संडे छुट्टी होती है तो सैटरडे की छुट्टी को खत्म किया जाए और 6 डे वर्क वीक बनाया जाए, क्योंकि आपको पता ही है कि पाकिस्तान में 5 डे वर्क वीक जो था वो आया था और इसकी मंजूरी जो थी वो 2022 में दी गई थी, क्योंकि इसमें एनर्जी का कंजर्वेशन जो था वो करना था, क्योंकि आपको पता ही है कि बिजली बहुत कम थी पाकिस्तान के अंदर। तो अब कैबिनेट डिवीजन को बताया गया कि पाकिस्तान में मिनिस्ट्रीज काम ठीक से नहीं कर रही हैं, 5 दिन में काम पूरा नहीं हो रहा है गवर्नमेंट के ऑफिसेज में, तो इसलिए जो है 6 दिन का काम जरूरी है। कैबिनेट डिवीजन जो है वो ये समरी जो है आगे भेजेगी और अगर ये अप्रूव होगी तो पाकिस्तान के अंदर 6 डे वर्क वीक होगा। इसके ऊपर डिस्कशन जो है ईद अल अधा की छुट्टियों के बाद जो है वो की जाएंगी। ठीक है भाई सही, फिर काम ज्यादा शुरू हो जाएगा पाकिस्तान में 6 दिन। ठीक है जी। अच्छा जी, पीटीआई ने चैलेंज किया है एफआईए के जो समन्स उन्होंने जारी किए थे इमरान खान साहब की जो कह रहे हैं कंट्रोवर्शियल एक्स के ऊपर पोस्ट आई थी उसको। पीटीआई के जो चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर खान और इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी रऊफ हसन और सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब खान जो है उन्होंने ये पिटीशन फाइल किया इस्लामाबाद हाईकोर्ट में, जिसमें के कहा गया था गवर्नमेंट की तरफ से कि ये जो पीटीआई है इसने एक प्री प्लान अटैक किया है और ये जो गलत किस्म की बातें हैं एक्स पे इमरान खान साहब कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने जो थी वो जो ट्वीट जिसकी बात कर रहे हैं अलेजली वो ये कह रही थी कि भई जो हमूदुर रहमान रिपोर्ट है उसको आप पढ़ें तो आपको पता चल जाएगा कि ट्रेटर जनरल याहिया था या शेख मुजीबुर रहमान था। पीटीआई ने कहा कि ये जो हमारी सोशल मीडिया टीम है ये उसने इसके ऊपर डाला है, इसकी जो है सहमति खान साहब ने नहीं दी थी, वो तो जेल में है, उनसे पूछा नहीं गया था। लेकिन इस सिलसिले में जो एफआईए थी उसने कहा जी कि इसने अदारों को बदनाम फिर से करने की कोशिश की है खासतौर पर जो फौज है उसको, तो इसलिए इसके खिलाफ जो है एक वो जो है समन्स भेजे गए थे जिसको कि आज पीटीआई ने चैलेंज किया है। इसके अलावा जो आज स्टेट डिपार्टमेंट है उधर एक रिपोर्टर ने क्वेश्चन किया है जो स्पोक्स पर्सन है यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के मैथ्यू मिलर साहब के, ये जो कुछ इमरान खान साहब के साथ हो रहा है पाकिस्तान के अंदर उसके बारे में आप क्या कहते हैं? तो उसके बारे में स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन ने कहा जी साडा कोई लेना देना नहीं है इसके नाल है जी, उन्होंने कहा हमने बस बर्बाद करना था हमने कर दिया। उन्होंने कहा जी हमारा इसके साथ कुछ भी लेना देना नहीं है और ये सारा का सारा जो है ये जो पाकिस्तान की अदालतें हैं ये उनके ऊपर है कि वो इमरान खान साहब का जो है वो केस आगे लेके कैसे चलना चाहते हैं, क्योंकि अभी उनको बताया गया था मैथ्यू मिलर साहब को कि साइफर केस में एक्विटल मिल गया है खान साहब को, तो अब आप उनका फेट जो है वो क्या देखते हैं। इसके साथ साथ पीटीआई के जो लॉयर हैं इंतजार पंजोटा उन्होंने आज कहा है कि इमरान खान साहब सब केसेस में से एक्विट होंगे और बहुत जल्दी बाहर आएंगे जेल से विदाउट doing any deal with any institution. खुश हो माजद भाई तुसी? ओ कितने खुश हो, देखो ये सारिया गल्ला तुहानू नहीं पता सन जो मैं तुहानू दस रही हां। अच्छा जब बुशरा बीबी जो है उन्होंने आज अप्रोच किया है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट को और उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि मेरी जो हियरिंग है इद्दत केस में उसको जल्दी किया जाए। आपको पता ही है कि वो अडियाला जेल के अंदर हैं, इनको और इमरान खान साहब इनके जो हस्बैंड हैं उन दोनों को तोशाखाना केस में जेल में डाला गया था। उन्होंने कहा जी अदालत से कि मेरे जो हैं वो जल्दी जल्दी जो है इस केस के ऊपर हियरिंग की जाए, उसके ऊपर कोर्ट ने इनकी प्ली मानते हुए जून 7 को अब उन्होंने कहा है कि हम इनके हियरिंग और जिन्होंने आर्ग्यूमेंट्स देने हैं इस केस में वो आके सामने दे ताकि इस पे करें। ये प्ली जो थी ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट की थी, उनके जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट के जो जज हैं शाहरुख अर्जुमंद उन्होंने, और लेकिन उन्होंने कहा था जी कि ये केस जो है इसको ट्रांसफर किया जाए क्योंकि बुशरा बीबी के जो पुराने हस्बैंड है कावर मानिका उन्होंने मेरे ऊपर एतराज किया है और उन्होंने कहा है जी कि मैं शायद बायस दिखा सकता हूं, तो इस केस को आप डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट के जज मोहम्मद अफसल मजूका को जो है उसको ये शिफ्ट करें, तो ये भी उनकी बात जो है ये मान ली गई है क्योंकि उन्होंने अपने आप को रिक्लूज किया। और जनाब जो मैंने एग्जैक्टली पीरी डिक्शन की थी मोदी जी के बारे में एग्जैक्टली वैसा ही हुआ है। मैंने आपको कहा था कि मोदी जी माइनॉरिटी गवर्नमेंट बनाएंगे, मोदी जी मेजॉरिटी नहीं जीतेंगे, 250 से 260 के बीच में सीटें जीतेंगे, एग्जैक्टली उन्होंने उतनी ही सीटें जीती हैं। लेकिन एनडीए यानी कि अपने एलाइज के साथ मिलकर ये इस दफा गवर्नमेंट बनाएंगे, लेकिन इस दफा की गवर्नमेंट जो होगी माइनॉरिटी गवर्नमेंट होगी और इसमें इस दफा मोदी जी अपना इतना जोर नहीं चला सकेंगे। हां अलबत्ता अगर बाकी तमाम पार्टीज अगर कांग्रेस के साथ मिल जाती हैं और इंडिया अलायंस जो ऑलरेडी भी कुछ उसमें पार्टीज हैं उनके साथ मिल जाती हैं तो कांग्रेस भी और इंडिया अलायंस भी गवर्नमेंट बना सकती है, तो ये 50-50 जो है अब इनके अंदर जो है चांसेस हैं। आपको पता ही है कि 6 तकरीबन जो फेजेस थे उनके अंदर इंडिया का इलेक्शन हुआ था, बेतहाशा गर्मी थी फिर भी लोग जो है वो वोटिंग के लिए निकले। ये वोटिंग हुई थी अप्रैल 19, अप्रैल 26, मई 7, मई 13, मई 20 और मई 25 और फिर आखिरी जो था लास्ट जून 1 को ही थी। इसमें रिकॉर्ड की गई थी रिस्पेक्टिवली जो टर्न आउट थी वो 66.1%, 66.7%, 61%, 67.3%, 60.5%, 63.4% and 62%। 969 मिलियन रजिस्टर्ड वोटर्स थे जिन्होंने के वोट्स डाले थे और इसके अंदर ईवीएम्स जिसके लिए पिट पिट के इमरान खान बेचारा जेल में पहुंच गया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें यूज करो, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स जो थी वो इसके अंदर यूज की गई थी क्योंकि सिंस 2004 पेपर बैलेट जो है अब यूज नहीं किया जाता है। ये जो ईवीएम मशीन है ये बैटरी ऑपरेटेड है, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी की भी जरूरत नहीं है और इसको इंटरनेट भी नहीं चाहिए, और ये जो है इंडिया ने खुद अपनी जो है वो इंडिजिनस इन्होंने बनाई है। मोदी जी जो है उनकी बीजेपी को वोट पड़ा है 36.9% और अपने एलाइज के साथ मिलकर जो है ये 292 सीट्स का आंकड़ा पार कर सकते हैं और पूरा जो सीट्स हैं वो 543 हैं क्योंकि मोदी जी कॉन्स्टेंटली कह रहे थे इसकी इस बार 400 पार, तो वो 400 पार नहीं हुए हैं, 292 उन्होंने जीती हैं अलोंग विद एनडीए एंड ऑफ कोर्स विद अलायंस जो कि लास्ट टाइम इन्होंने 303 जीती थी जो कि बहुत ज्यादा मेजोरिटी से ज्यादा इनको सीटें मिली थी और इसीलिए ये मेजोरिटी गवर्नमेंट बना सके थे। इस वक्त कहा जा रहा है जी कि ये जो है मेजोरिटी गवर्नमेंट नहीं बना पाएंगे। इसके साथ साथ राहुल गांधी ने जो है ये जब रिजल्ट आए हैं आज तो उसके ऊपर बात करते हुए कहा जी कि बीजेपी और मोदी जी जो है उनको इंडिया के वोटर्स ने पनिश किया है और ये जो जिस तरह की इनकी जो राजनीति ये कर रहे थे और लोगों को एक दूसरे के खिलाफ कर रहे थे उसमें लोगों ने उनको बता दिया है कि असल गॉड जो है वो लोग हैं, तो ये जो लैंडस्लाइड विक्ट्री की बातें कर रहे थे ये इनकी जो है जाहिर है कि धरी की धरी रह गई हैं। इंडिया अलायंस की सबसे बड़ी जो है वो कामयाबी रही ये रही कि बीजेपी की बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो स्टेट्स थी उनके अंदर अब इन्होंने जो है इन रोड्स बनाई हैं। आपको बड़ी हैरत होगी कि ये जहां पे बीजेपी ने राम मंदिर बनाया था अयोध्या में, अयोध्या तक की सीट जो है बीजेपी ने लूज की है इस दफा। हाँ हालांकि ये इतना बड़ा मुद्दा था और इसको इतना बड़ा मुद्दा बनाया गया था फिर भी इसके अंदर उन्होंने जो है राहुल गांधी ने बात करते हुए आज रिपोर्टर्स के साथ बात कर रहे थे, उन्होंने कहा जी द कंट्री हैज यूनैनिमसली और क्लियरली स्टेटेड कि अब उनको मोदी जी और अमित शाह जो है वो नहीं चाहिए कंट्री को रन करने के लिए और ये एक बहुत बड़ा ह्यूज मैसेज है। उन्होंने जब उनसे पूछा गया कि अब आपकी आगे की राजनीति क्या होगी तो उन्होंने कहा जी कि कांग्रेस जो है बाकी तमाम एलाइज के साथ कल, क्योंकि इंडिया में कहा जा रहा है 24 to 48 hours बहुत क्रूशियल है, जो भी कोई अलायंसेस बना लेगा वो गवर्नमेंट बना सकेगा, उसी के ऊपर बात कर रहे थे राहुल गांधी। उन्होंने कहा कल हम अपने अलायंस के साथ बैठ के बात करेंगे और फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो आगे लेके चलेंगे। और कांग्रेस के पास इस वक्त जो है 230 सीट्स हैं, लेकिन इसके अंदर जो दो किंग मेकर हैं एक तो तेलुगु देशम पार्टी के सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू हैं और इनकी जो पार्टी है टीडीपी उसके पास 16 सीटें हैं। इसके अलावा जो बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं और जेडीयू के जो सुप्रीमो हैं नीतीश कुमार साहब, वो भी किंग मेकर हैं। जेडीयू जो है उसके पास भी जो सीटें हैं वो किसी तरफ भी स्विंग करे, तो ये दो लोग जो हैं उनके साथ कोई भी अलायंस बनाने की कोशिश करेगा, चंद्रबाबू नायडू और जो नीतीश कुमार हैं, ताकि उनकी गवर्नमेंट जो है बन सके। इस वक्त के जो रिजल्ट्स आए हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया 543 इंडिया के अंदर सीट्स हैं, बीजेपी ने जीती हैं 240, कांग्रेस ने जीती हैं 99, एसपी समाजवादी पार्टी जो के है उसने 37, टीएमसी तृणमूल कांग्रेस ने 29, डीएमके ने 22, टीडीपी ने 16, ये टीडीपी वो या चंद्रबाबू नायडू की जो है पार्टी है उसने 16, जेडी ने 12, आरजेडी ने 4, वाईएसआर ने 4, आम आदमी पार्टी ने 3 और अदर्स जो हैं, अदर्स ने जीती हैं, जिसके के अंदर जाहिर है कि इंडिपेंडेंट्स हैं और छोटी छोटी और रीजनल पार्टीज हैं, 93 सीट्स उन्होंने जीती हैं। तो हो सकता है कि इनको ये जो अदर्स हैं चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को अपने साथ मिला के जो है हुकूमत अब बनाई जाएगी, लेकिन जो भी बनाएगा, कांग्रेस बनाएगी यानी इंडिया अलायंस बनाएगी या एनडीए की गवर्नमेंट बनेगी यानी कि बीजेपी की गवर्नमेंट अगर बनेगी तो भी किसी का भी इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा और इतनी ज्यादा वो जो एब्सोल्यूट पावर थी वो किसी के पास नहीं रहेगी। इसमें अब जब ये आज जनाब रिपोर्ट आई कि मोदी जी ने कंप्लीट स्वीप नहीं किया है, तो जो इंडियन स्टॉक मार्केट थी वो बेतहाशा क्रैश की और इसके अंदर जो इन्वेस्टर था उसको मैसिव किस्म के जो है लॉसेस आए एट द ट्यून ऑफ 31 लाख करोड़ का नुकसान जो है इन्वेस्टर्स को आया और पूरी की जो ओवरऑल मार्केट कंसोलिडेशन थी जो कि लिस्ट हुई हुई है पीएसई की वो बुरे तरीके से गिरी नियरली टू 395 लाख करोड़ अगेंस्ट 426 लाख करोड़ एट प्रीवियस सेशंस क्लोज। इंडियन स्टॉक्स जो है उसके अंदर सेल ऑफ बेतहाशा आया और जो सेंसेक्स था वो मैसिव लॉस के साथ क्लोज किया है 4,390 पॉइंट्स और 5.74% एट 72,079.05 और निफ्टी 10 जो है वो भी बेतहाशा उसने लॉस शो किया, इट वॉज कट टू 1,379 पॉइंट्स और 5.9% एट 21,884.50। स्टॉक मार्केट जो थी वो जो है बहुत बुरे तरीके से उसने सफर किया क्योंकि उनको लग रहा था कि जैसे एनडीए की गवर्नमेंट यानी कि बीजेपी एन एलाइज विन करेंगे बट दे वर ऑल स्पूक्ड बाय द रिजल्ट्स। फिल्म मेकर अनुराग कश्यप ने कहा जी कि हम तो फिल्म बनाते हैं, हम तो बड़े क्रिएटिव लोग हैं और हम तो काम के ऊपर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं और हमारी फिल्मों के तो बजट इतने नहीं होते हैं, बजट तो असल में ये जो बड़े बड़े फिल्म सितारे हैं उनके होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इन द मिडल ऑफ अ जंगल जहां पे कि हम शूट कर रहे हैं तो एक जो 5 स्टार वाला जो एक्टर होता है वो कहता है जी कि मुझे तो बर्गर खाना है जो कि उस जंगल से 3 घंटे दूर होता है, तो एक गाड़ी स्पेशली वहां जाती है और उनके लेके लिए जी बर्गर लेकर आती है। इसी तरह वो कहते हैं जी कि मेरे सेट पे तो कभी ये वैनिटी वैन जो है नहीं देखी जाती, तो मैं हैरान हो गया कि सेक्रेड गेम्स टाइप के जो बनते हैं ओटीटी के ड्रामे उनके अंदर कितनी बेशुमार वैनिटी वैन होती हैं और उसकी वजह से फिल्मों के और ये जो बाकी ओटीटी के जो ड्रामे होते हैं उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो मिलियंस को जाके टच करती है, वरना ऐसा कुछ है नहीं। आज एक बड़ी पुरानी थ्रोबैक पिक्चर जो है वो सरफेस की है जो कि सलमान खान और संगीता बिजलानी जो उस वक्त की कोई उस जवानी की उनकी जो गर्लफ्रेंड थी उनकी सामने आई है और दोनों ने प्लान भी किया था शादी का लेकिन फिर ये प्लान आगे ज्यादा चल ना सका और उसकी वजह ये है कि इनके बीच में डिफरेंसेस आ गए थे लेकिन अभी भी ये दोस्त हैं। लेकिन उस वक्त जब इनको इनसे प्यार था तो वो जो गुनाहों का देवता जब शूटिंग हो रही थी महबूब स्टूडियो में तो सलमान खान का दिल किया संगीता बिजलानी को मिलना, तो उन्होंने शॉर्ट्स पहने और साइकिल चलाते हुए अपने घर से इधर आ गए, तो उस वक्त जो है ये बड़ा ट्रेंड बन गया और ये बात भी मशहूर हो गई कि सल्लू भाई को जिससे प्यार होता है वो अपने काचे में भी साइकिल पे बैठ के वहां पे आ जाता है। और जनाब इंडिया के जो रिचेस्ट स्टार्स हैं उनके आज आंकड़े कुछ सामने आए हैं और ये आपके दिल को सड़ाने के लिए काफी हैं। नंबर 1 पे हैं शाहरुख खान, इनके पास है 6,300 करोड़ रुपए, अक्षय कुमार के पास है 5,200 करोड़ रुपए, अमिताभ बच्चन है नंबर 3 पे 4,000 करोड़ इनके पास हैं, ऋतिक रोशन 3,100 करोड़ इनके पास है, पांचवें नंबर पे हैं सलमान खान, जिनके पास 2000 करोड़ है, लेकिन वो कहते हैं सलमान खान इंडिया का सबसे रिच एक्टर हो सकता है, लेकिन अपना वो बेतहाशा पैसा जो है वो चैरिटी में और खास तौर पे अपनी जो चैरिटी है बीइंग ह्यूमन उसको दे देता है। आमिर खान के पास 1862 करोड़ हैं, अल्लू अर्जुन जो साउथ के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं 1370 करोड़ उनके पास हैं, इसी तरह साउथ के जो प्रभास हैं उनके पास 1300 करोड़ है, रामचरण जो है वो भी साउथ के सुपरस्टार 1200 करोड़ है उनके पास, रणवीर सिंह के पास 1100 करोड़ है। ठीक है पायन, खुश हो तुसी। और जनाब आईसीसी ने अनाउंस किया है कि वो अब बहुत ज्यादा मैसिव तरीके से जो है एक जो विनिंग मनी लेकर आ रहा है, 11.25 मिलियन जो है वो ट्रॉफी जीतने वाले को दिया जो है उस उनको डिफरेंट जो उसके अंदर जो कैटेगरीज भी हैं ऑल टुगेदर इतने पैसे दिए जाएंगे। विनर जो है उसको 2.45 मिलियन दिए जाएंगे। इसके अलावा जी वो कहते हैं जी इस 9th एडिशन के लिए जो T20 का हो रहा है इसके अंदर 20 जो टीम्स हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं, 28 डेज के लिए ये सारे का सारा एक्शन चलेगा और 9 वेन्यूज के ऊपर यूएस और वेस्ट इंडीज में ये सारा कुछ चलेगा। जो नंबर 1 टीम है उसको जो है आपको पता ही है कि हमने बता दिया कितने पैसे मिलेंगे, लेकिन इसके अलावा रनर्स अप को भी मिलेंगे 1.28 मिलियन, सेमीफाइनलिस्ट को 787,500 ईच, यानी कि दोनों जो जीतेगा जो हारेगा वो भी, जो एडवांस नहीं कर सकेंगे सेकेंड राउंड में उनको भी मिलेगा 382,500, जो कि फिनिश करेंगे 9th, 10th, 11th, 12th पोजीशन पे उन टीम्स को भी मिलेगा 247,500।